پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل, اور اس پروگرام کو آواز اور تصویروں سے ہم آہنگ کر کے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے فیس بک پر ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں گل رخ. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں قائم پہلے پاکستانی امریکن کمیونٹی سینٹر یا پیک کے ایک فاؤنڈر اصغر ابو بکر, جن کا سینٹر گزشتہ 10 سال سے پاکستانی کمیونٹی کے قانونی, معاشرتی, اقتصادی اور تعلیمی مسائل حل کرنے میں مدد کے ساتھ ساتھ یہاں امریکہ میں پاکستانی کلچر کو متعارف کرانے کے لیے بھی کوشاں ہیں. جبکہ ان کا سینٹر پاکستان اور امریکہ میں فلاحی سرگرمیوں میں مصروف اداروں کو پروموٹ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک الیکٹریکل انجینئر اور ایک کامیاب بزنس مین اصغر ابو بکر ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئے کاروباری اداروں کی سرمایہ کاری میں مدد کرنے والی ایک کمپنی K2 وینچرز کے مالک اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. ہمارے پروگرام کو ہمارے مہمان کی تصاویر کے سنگ سنگ ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi. ہمارے مہمان اصغر ابو بکر اس وقت موجود ہیں سین فرانسسکو کیلیفورنیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم اصغر ابو بکر صاحب.
دینے کا
بہت شکریہ ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. کچھ سنائیے ہمارے سننے والوں کو اپنی اس جد و جہد کی کہانی جس نے آپ کو ایک الیکٹریکل انجینئر سے ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا, اور سنائیے اپنے ان جذبوں کی کہانی جس نے آپ کو پاکستانی امریکی کمیونٹی کو امریکی معاشرے میں نمایاں مقام دلوانے اور اس کی نئی نسل تک پاکستانی ثقافتی ورثہ منتقل کرنے پر آمادہ کیا.
ہاں میں یہاں یو ایس اے میں 1971 سے ہوں, تو 40 سال 45 سال سے اوپر ہو گئے, اور میں نے NED انجینئرنگ یونیورسٹی سے وہاں الیکٹریکل انجینئرنگ میں کام ڈگری کی تھی, اور یہاں کے UCLA میں کیا تھا. 30-40 سال بزنس اور جاب کرنے کے بعد پھر پاکستان کی یاد آنی شروع ہوئی, تو 2001-2002 سے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے ہم یہاں رہیں لیکن پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, پاکستان سے تعلق ہمیشہ رہے گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے جو کہ پاکستان اگر زیادہ نہیں گیا تو ان کا شاید تعلق نہ رہے, لیکن جو ہمارے جنریشن ہے اس کا ہمیشہ رہے گا. اور یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے میرے سے اتفاق کرتے ہیں, اور یہ کہ ہم نہ صرف کہ یہاں یو ایس اے میں پاکستان کے لیے جو کام کر سکتے ہیں کریں, پاکستان میں جو کام ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم پروموٹ کر سکیں جو بھی جس طرح سے بھی کر سکیں. تو 2007 میں میرے دوست ہیں فاروق شاہ خان, وہ اردو کی کلاسز چلا رہے تھے اپنی آفس کے اندر. سیٹرڈے مارننگ کو ایک دو گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی, تو میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس کو ذرا اور وسیع کیا جائے, اس کا مشن جو ہے ذرا ایکسپینڈ کر کے کریں. تو ہم نے جولائی 2007 میں پاکستانی امریکن کمیونٹی سینٹر کی بنیاد رکھی, اس کی انکارپوریشن ہوئی, اس کو 501(c)(3) ٹیکس ایگزمپٹ سٹیٹس مل گیا, اور پھر ہم نے جگہ لی جو کہ جہاں کہ ہم کنٹینیوس سال بھر پروگرام کر سکیں, اردو کلاسز کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں گی اور بعد میں بات کریں گے. تو وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. تو یہ लगाव पाकिस्तान का है।
अच्छा, जिसने आपको आमादा किया कि आप यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। तो लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन भी मौजूद हैं, वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत करती हैं। तो आपकी जो, आपका जो सेंटर है उसमें और पाकिस्तानी अमेरिकी जो एसोसिएशन हैं अमेरिकन, उनकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क है क्या? आप कहेंगे कि आप उनसे मुख्तलिफ हैं?
पाकिस्तानी एसोसिएशन मेरा ख्याल है अमरीका के हर बड़े शहर में है। उनका जनरली ये होता है कि एक से दो साल के प्रोग्राम होते हैं। एक पाकिस्तान डे का प्रोग्राम होता है और पाकिस्तान की आज़ादी का प्रोग्राम, 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हर साल होता है, हर एक जगह पे होता है। लेकिन हमने सोचा कि इसके अलावा और ज्यादा किया जाए, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ के कंटिन्यूस प्रोग्राम होते रहें। तो इसीलिए ये जो है हमारा सबसे बड़ा जो डिफरेंस या मुनफरद जो चीज कर रहे हैं, हमारे पास फिजिकल लोकेशन है जो कि हम रेंट करते हैं, और 10 साल से वो चल रही है, नवंबर 2007 से वो है। तो उसमें कंटिन्यूस प्रोग्राम होते हैं। हम बाद में बात करेंगे कि कितने प्रोग्राम हमारे उस सेंटर में होते हैं और कितने बाहर होते हैं। तो उस जगह पे हम 100 के करीब लोगों को बुला के प्रोग्राम कर सकते हैं, और बाकी उससे बड़े हों तो फिर बाहर करते हैं।
अच्छा, तो यानी आपका जो सेंटर है उसमें और पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन के कामों में ये फर्क है कि वो सिर्फ 2-3 ओकेजन पर ये काम करते हैं, जबकि आपका सेंटर पूरे साल काम करता है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे साल आपका सेंटर करता है, जिससे पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी की भी खिदमत होती है और पाकिस्तान के लिए भी आप कुछ पे बैक करते हैं?
शुरू हुआ था जैसे उर्दू क्लासेस का, उसके बाद म्यूजिक की क्लासेस हुई जो कि हर वीक चलती रही। फिर इसके बाद हमारे पोएट्री का, उर्दू पोएट्री का प्रोग्राम शुरू हुआ, यहाँ के लोग हैं वो है। और फिर हमारे म्यूजिक का कैरियोकी टाइप का प्रोग्राम है। तो कैरियोकी प्रोग्राम 9 साल से चल रहा है कंटिन्यूस, हर महीने एक प्रोग्राम होता है। फिर अभी 3-4 साल पहले हमारा एक और प्रोग्राम शुरू किया गया कि सोशल गैदरिंग कहते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ ओपन डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट्स होते हैं। वो हर महीने होता है एक प्रोग्राम।
अच्छा,
तो ये दो प्रोग्राम जो है हमेशा हर महीने दो प्रोग्राम होते हैं। साल में एक जब रमजान आ जाते हैं तो एक दिन, एक महीना जो होता है उस वक्त नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा 11 महीने प्रोग्राम हमेशा होता है, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ उसमें, कुछ ना कुछ होता रहता है।
और उसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अदब होता है, मौसीकी होती है, फनून लतीफा का भी एहतमाम होता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, तो इसके अलावा,
इसके अलावा जो है ना और प्रोग्राम, जैसे मैं आपको सकाफत की बात है तो यहाँ हमने सादकैन के 2 बार नुमाइश की है हमारे सेंटर पे। पूरे दिन की नुमाइश होती है। वो हम यहाँ लॉस एंजलिस में हमारे दोस्त हैं, उनके पास उनकी ओरिजिनल तस्वीरें भी, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, और वो उनके पास रीप्रिंट्स भी, वो लाते हैं, बात करते हैं, बताते हैं, वो लोग खरीदते हैं उसके। तो 2 बार वो कर चुके हैं जो कि बिल्कुल सेपरेट प्रोग्राम है। फिर कम्युनिटी की और हेल्प के लिए जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग के सेमिनार किए हैं, हमने लीगल सेमिनार किए हैं। अभी जो ट्रैवल बैन हुआ था तो हमने 2 वकीलों को बुलाया था जो कि इमिग्रेशन के वकील थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए कि अगर आप वीजा के तहत आ रहे हैं तो आपके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, उसको कैसे हैंडल करें। अगर ग्रीन कार्ड से आप आ रहे हैं तो क्या आपकी मुश्किलात हो सकती हैं, और अगर आप सिटीजन भी हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और उसको कैसे हैंडल करें कस्टम या बॉर्डर पे।
अच्छा।
तो उसका पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम था, बड़े लोगों के सवाल जवाब थे, लोग काफी उनको इन्फॉर्मेशन मिली। तो इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं। फिर हमने अभी एक प्रोग्राम हुआ था कि जैसे सेहत के बारे में ही, सिर्फ कम्युनिटी के कैसे सेहतमंद रहें, हर एज में सेहतमंद कैसे रहें, तो उसके बारे में प्रोग्राम हुआ था कि क्या क्या करें, एक्सरसाइज करें, डाइट करें, मेडिकेशन, ये वो चीजें सबके लिए, तो वो उसके लिए प्रोग्राम था। फिर अभी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोग्राम हुआ था जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग है कि आप जब रिटायरमेंट हो जाएं तो आप पैसों का किस तरह से उसको मैनेज करें कि ताकि आपकी पूरी जिंदगी चले और आप सही तरह से जिंदगी गुजार सकें।
तो इस एक तरह से आप, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि आप पाकिस्तानी कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है उनकी मुख्तलिफ हवाले से जो जो उनकी जरूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए आप एहतमाम करते हैं। तो क्या जब आप मिसाल के तौर पर अगर आपने उनको कोई अवेयरनेस देनी है किसी लीगल मौजू पर, तो फिर सेमिनार्स करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, या कोई शो करते हैं, क्या बताइए कि कैसे करते हैं?
हाँ, तो जैसे ये अभी मैंने लीगल सेमिनार की बात की थी, तो उन्होंने अटर्नी, 2 अटर्नीज थे, उन्होंने पहले प्रेजेंटेशन की, एक डेढ़ घंटे की प्रेजेंटेशन थी, फिर एक घंटा क्वेश्चन आंसर है, सब अपने अपने जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो किए गए, जो जनरल क्वेश्चन भी किए गए, फिर उसके बाद काइंड ऑफ चाय पानी का थोड़ा सा इंतजाम हमेशा होता है आधे घंटे का, पाकिस्तान में खाने पीने के बगैर नहीं हो सकता ना।
अच्छा, तो उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं और जो 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 जिसका कोई मसला होता है वो इंडिविजुअली भी आप उनको सुनते हैं और कलेक्टिवली भी उनके सवाल जो है वो पेश किए जाते हैं किसी माहिर के सामने।
और उसमें इस प्रोग्राम में स्पेशली हमने ये किया था कि सबको जिस जिसने कंसल्टिंग करनी हो, प्राइवेट कंसल्टिंग, तो दोनों अटर्नी ने 10-10 मिनट का टाइम दिया था प्राइवेट इंडिविजुअल कंसल्टिंग। तो उन्होंने इमिग्रेशन के अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि वो वकील थे तो उन्हें और चीजों का भी पता था, तो उन्होंने उनको सही तरह बताया कि किस तरह कर सकते हैं या आगे क्या करना चाहिए। तो उनको मतलब इंडिविजुअल मुनफरिद सब हर एक को इंफरादी मिली वो, एक तरह से उनको कैसे किया जाए उनका जो
बिल्कुल को इनफरादी मसाइल को हल करने का भी प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और कलेक्टिव जो उस वक्त ये प्रॉब्लम्स होते हैं किसी खास मौजू पर उनको हल करने के लिए भी आप उनकी मदद करते हैं। और आपने कहा कि आप फनून लतीफा जो पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी की नई जनरेशन है उनको पाकिस्तानी आर्ट और मौसीकी से भी आशना करते हैं, तो उसके लिए फिर आप पाकिस्तान डे पर प्रोग्राम करते हैं और जो दूसरे योम पाकिस्तान पर या योम आज़ादी पर प्रोग्राम करते हैं या उसके अलावा भी मौसीकी के प्रोग्राम्स का एहतमाम करते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए?
हाँ, ये हमारे ये जो मैंने अभी बताया वो तो हमारे सेंटर पर प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने कहा ना 100 से ज्यादा लोगों तो फिर बाहर करना पड़ता है, तो हम जनरली 3 बड़े प्रोग्राम करते हैं। पाकिस्तान डे का प्रोग्राम होता है जो कि मैं बाद में अभी बात करूंगा जब पिछला हुआ, इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होता है और जनरली हम बसंत काइट फ्लाइंग के फेस्टिवल होता है। इस लास्ट ईयर बारिश हुई तो उससे नहीं हो सका और जनरली यहाँ वहाँ पाकिस्तान में तो फरवरी में होता है, यहाँ जनरली हम अप्रैल मई में कर सकते हैं क्योंकि उससे पहले बारिशें हो रही होती हैं यहाँ। तो लास्ट ईयर नहीं हो सका, इस साल अभी करने का इरादा है। लेकिन पाकिस्तान जो अभी डे हुआ उसमें लास्ट जो पाकिस्तान डे हुआ तो मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तानी जो है ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उनको भी प्रमोट करें और हेल्प कर सके हम। तो ये हमने यहाँ की पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है चाइल्ड लाइफ जो कि जनरली बच्चों के लिए उन्होंने इमरजेंसी रूम्स ले लिए हैं, कराची के अंदर अभी शुरू किया हुआ, उनके पास सिविल हॉस्पिटल और जिन्ना हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी रूम थे उन्होंने ले लिए, उन्होंने उसको मॉडर्नाइज किया है। उसके बाद वो फ्री सर्विस देते हैं सब, वो कहते हैं कि $7 के अंदर एक बच्चे को हम इमरजेंसी का कर सकते हैं और उसमें दवाइयां भी शामिल हैं। पाकिस्तान में जनरली ये होता है कि आप ये सिविल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल जाएं तो डॉक्टर कहते हैं भाई जाके बाहर दवाई ले आओ, अब वो कोई तकलीफ में बैठा हुआ वो इंतजार करता रहे एक घंटे बाद दवाई मिलेगी, उन्होंने दवाइयों का भी वही रखा हुआ है। तो उनको हमने फंड रेजिंग के लिए और हमारे पाकिस्तान डे प्रोग्राम को मिला दिया हमने।
अच्छा।
कि लोग उसके लिए तो आएंगे ही, तो उसके लिए हमने इंतजाम किया। तो वहाँ से उनके जो सीईओ हैं एहसन रब्बानी साहब आए, उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, फिर और लोग जो वहाँ जाके उनकी चीजें देख सकते हैं उन्होंने उसकी टेस्टिमोनियल दिए, फिर उसके बाद फंड रेजिंग हुई। तो 45 मिनट्स के ये था, पाकिस्तान डे स्टार्ट हुआ तो वो पाकिस्तानी नेशनल एंथम और पाकिस्तान के चीजों के बारे में हुआ और उसके बाद हमारे एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता है। लोग ज्यादातर अच्छा कोई सिंगर या एंटरटेनर आए तो उसके लिए आ जाते हैं, लेकिन पर्पज यही था कि लोग आए और फंड दें उस चाइल्ड लाइफ को। तो हमने हमारे पुराने सिंगर आलमगीर को बुलाया था, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मैं ताजुब हुआ कि अभी तक वो इतनी अच्छी तरह गा सकते हैं, लोगों को जैसे मुट्ठी में लिया हुआ था उन्होंने डेढ़ घंटे तक।
अच्छा, तो हमने आपके इस प्रोग्राम की जो आलमगीर ने आपके स्टेज पर शो किया था उसकी कुछ तस्वीर अपने फेसबुक पेजेस पर भी पोस्ट कर दी हैं और इस वक्त हमारे सुनने वाले जो फेसबुक पर उर्दू वीए के फेसबुक पेज पर हमारा प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं उसमें आलमगीर की वो तस्वीर भी जरूर देख रहे होंगे जिसमें वो इनके शो में गुलूकारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है उनको मिली नगमे और दूसरे जो मिली सॉन्ग्स हैं उनसे मुतारिफ कराते हैं और एक तरह से आप उनको करीब करते हैं उनके अपने वतन से क्योंकि उनको यहाँ वो मौके में असर नहीं होते कि वो अपने मुल्क से इन टच रह सकें। तो ये तो थे ना कि आपने जो यहाँ पर आपका जो सेंटर है वो खिदमत कर रहा है पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये तमाम भी किया कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर उनको भी मरबूत करें और उनको मरबूत करके कोई नई चीज़ पेश करें यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए।
हाँ, हमने एक्चुअली ये फरवरी में हमने ये किया था। हमारी जनरली यहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे तो हमारा बड़ा ताउन रहता है, वो हमारे प्रोग्राम प्रमोट करते हैं, हम उनके प्रोग्राम प्रमोट करते हैं। तो यहाँ चार पांच ऑर्गेनाइजेशन है, दो तो पूरे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपना है जो फिजिशियन की ऑर्गेनाइजेशन है, और ओपन है जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो दो ऑर्गेनाइजेशन तो नेशनल है जो कि यहाँ उनके चैप्टर्स भी हैं। उसके अलावा हमने यहाँ उर्दू एकेडमी है उनको, उसके अलावा ये जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, DCF जो सिटीजन्स फाउंडेशन है, HDF जो फाउंडेशन है उसका भी, उन सबको बुला के हमने सबने अपने बताया कि क्या क्या वो करते हैं। और फिर मकसद इसका ये था कि हम किसी तरह से ये अगर इत्तफाक कर सकेंगे, साल में एक प्रोग्राम हम पाकिस्तान के बारे में साथ करेंगे, सब ऑर्गेनाइजेशन करेंगी कि जो कुछ उन्होंने पेश करना है, जो कुछ करना है तो कर रहे हैं। तो अभी हमने अगस्त 14 के लिए हम ये अभी उसकी प्लानिंग शुरू हुई है कि 6 से 7 घंटे का, 8 घंटे का प्रोग्राम होगा, 12 से 7-8 बजे तक का, और उसमें सब ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सकाफती भी होगा, उसके अंदर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो भी होंगी, वो अपने बूथ लगाएंगी, अपनी चीजें बताएंगी, अगर उन्होंने फंड रेजिंग करनी है उस वक्त तो वहाँ भी वो भी करेंगे, और वो फिर और कोई म्यूजिक वगैरह इस तरह के भी प्रोग्राम होंगे। और बच्चों को हमेशा आपने पहले बच्चों की बात की, हमारे वो पाकिस्तान डे का जो प्रोग्राम है तो उसमें जो अमरीकी कौमी तराना और पाकिस्तानी कौमी तराना एक लड़का और लड़की ने किया था, पाकिस्तानी बच्चे थे दो, 10 और 12 साल के, उन्होंने पूरा किया था, बहुत ही अच्छी तरह किया था।
तो आप यहाँ के
याद किया हुआ था किसी तरह पढ़ के नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह वो पेश किया दोनों को।
तो आप यहाँ की पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी को, जो खासतौर पर नई जनरेशन है, उसको यहाँ के कल्चर के बारे में तो उनको मालूम हो ही रहा है, और साथ साथ उनको बता रहे हैं कि आपके जो आबाई मुल्क है उसका कल्चर, उनके अम्मी अब्बू का जो कंट्री था जहाँ वो रहे थे उनका कल्चर क्या था। तो बेहद शुक्रिया असगर अबू बकर, हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं।
सामीन, हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी का दिन जुमेरात के बजाय अब बुध हो गया है।
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है, और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रमा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कायम पहले पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सेंटर या पैक के एक फाउंडर असगर अबू बकर, जिनका सेंटर गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटी के कानूनी, माशरती, इक्तसादी और तालीमी मसाइल हल करने में मदद के साथ साथ यहां अमरीका में पाकिस्तानी कल्चर को मुतारिफ कराने के लिए भी कोशां है। जबकि उनका सेंटर पाकिस्तान और अमेरिका में फलाही सरगर्मियों में मसरूफ इदारों को प्रमोट करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक कामयाब बिजनेसमैन असगर अबू बकर टेक्नोलॉजी के शोबे में नए कारोबारी इदारों की सरमायाकारी में मदद करने वाली एक कंपनी K2 वेंचर्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। हमारे मेहमान असगर अबू बकर मौजूद थे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से टेलीफोन पर हमारे साथ। हमारे प्रोग्राम को हमारे मेहमान की तस्वीर के संग संग हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/voaurdu और facebook.com/hardamrawahaizindagi। हमारे मेहमान असगर अबू बकर इस वक्त मौजूद हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से टेलीफोन पर हमारे साथ। जी असगर अबू बकर साहब, ये जो आपका सेंटर ये इस वक्त सिर्फ कैलिफोर्निया में है, क्या आपका इरादा है कि इसकी ब्रांचेस दूसरी रियासतों में भी कायम करें?
ये बहुत सी बार रिक्वेस्ट आती है और उसमें रिक्वेस्ट में ये होता है कि हम बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके पे चीजें करते हैं और उसमें कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि जिसके दिल में हो कि ये करेगा और कंटिन्यूअस करता रहे, चाहे और कुछ भी करता हो लेकिन वो जरूर करता रहे। तो अभी तक कोई हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग नहीं मिले जो कि हम कहें कि चलें करें, लेकिन हम ऑफिशियली कोई हम नहीं चाहते कि कोई ब्रांच हो।
अच्छा।
क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन जैसे हमारे उसके हिसाब से सैक्रामेंटो में लोगों ने पोएट्री का मंथली पोएट्री का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो वहाँ भी सैक्रामेंटो में हुआ, लेकिन वो हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, उनके लोग भी यहाँ आते हैं, तो वो करीब है शहर, तो उससे लिए आसानी हो जाती है। लेकिन
अच्छा।
हमने और किसी जगह पे नहीं किया और अभी तक इस तरह का सोचा नहीं है कि करें, क्योंकि हर एक जगह पे और जैसे एक पाकिस्तान फाउंडेशन और लोग हैं और चीजें भी करते रहते हैं, तो ये हमने अभी किया नहीं है कि ये करें, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि करना चाहिए, ब्रांच करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ी लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। माली तो माली हो जाता है काम, कुछ ना किसी तरह से हो जाता है वो।
अच्छा, लेकिन ये तो यहाँ के लोगों के लिए आप करें, पाकिस्तान के लिए आपका सेंटर खास तौर पर क्या कर रहा है जिसका आप इस पर जिक्र करना चाहेंगे?
ये जैसे मैंने बताया चाइल्ड लाइफ का, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन और है पाकिस्तान में जो स्कूल्स बना रहे हैं, द सिटीजन फाउंडेशन।
जी जी।
तो उनके लिए हमने 3 बार इसी तरह की फंड रेजिंग और उस तरह के साथ उनके साथ मिलके किया। वो और वो बहुत सारे स्कूल हैं, अगर आप वहाँ का पता ना, सिटीजन फाउंडेशन में 1000 से ज्यादा स्कूल्स हैं उनके और 1,00,000 से ज्यादा बच्चे हैं उनके स्कूल में, और जनरली प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक के उनके पास पूरा है, उनकी खुद की स्कूल्स होते हैं। मैं 2-3 बार जा चुका हूं और देखा है, उनका कोरंगी में हेडक्वार्टर भी है, बड़े अच्छे स्कूल हैं, बड़े अच्छी तरह से रन होते हैं, बड़े उसमें कंप्यूटर्स और सब चीजें मौजूद हैं, तो उनको हमने किया था। फिर हमारे जो अभी है एक हमारे वहां से डेफ रीच के एक प्रोग्राम है जो कि एक अमरीकी वो हैं, वो चला रहे हैं, लेकिन वो भी आ रहे थे, तो उनके लिए भी हमने प्रोग्राम किया था, और अभी उनके साथ भी बात हो रही कि उनको कैसे और प्रमोट किया जाए पाकिस्तान का जो प्रोग्राम
तो,
है
जो भी पाकिस्तान में काम करने वाले इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, अगर वो चाहें तो आपसे राबता करके यहाँ पर अमरीका में आकर अपनी फंड रेजिंग भी कर सकते हैं और आप उनकी जो माली मदद करवाने में उनकी मदद कर सकते हैं, वो भी आप करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, कुछ जिक्र करें आपकी उस कंपनी का जो छोटे कारोबार करने वालों की सरमायाकारी में मदद करती है, K2 वेंचर। तो ये कंपनी जो आपने कायम की, किस तरह, क्या उसमें सिर्फ पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की मदद करती है, पाकिस्तानी कारोबारी कंपनियों की मदद करती है, या जनरली कोई भी कंपनी जो छोटी है उसकी मदद करती है, और किस तरह करती है?
जनरली तो कोई भी कंपनी हो, ये मैं जब इंटेल में था तो आखिरी 3 साल में उनके वेंचर ग्रुप में था, तो वेंचर ग्रुप का मतलब है कि वो भी छोटी कंपनियों को पैसे देते थे, फंडिंग देते थे, तो उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कहा कि मैं अपनी भी करूंगा। जब मैं 2000 में इंटेल से चला गया तो मैंने अपनी कंपनी 99 में शुरू की, और ये कंपनी जनरली ये करती है कि यहाँ सिलिकन वैली जनरली, लेकिन और जगह भी की है, सैन डिएगो, सियाटल में भी, लेकिन जनरली सिलिकन वैली, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के अंदर छोटी कंपनियां जो कि अभी उनके पास या तो कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ, और या उन्हें कोई आइडिया होता है, उस वक्त उन्हें जो है ना बड़े इन्वेस्टर्स नहीं दे सकते पैसे, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, कुछ पता चले कि ये चलेगी भी या नहीं, तो सबसे रिस्की एरिया वो होता है उस वक्त जबकि सिर्फ आइडिया होता है। तो उस वक्त मेरे ये K2 वेंचर्स और बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां जो शुरू कर रहे हैं कंपनियां, तो उसको करते हैं। मैं ये करता हूँ जनरली कि पाकिस्तानी कोई कंपनी अगर स्टार्ट करना चाहता, मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं 1 घंटा तुम्हारी बात सुन लूंगा और मैं तुम्हारे बता दूंगा कि इसमें क्या अच्छी बात है और क्या सही बात नहीं है और किस तरह से ठीक करें। अगर वो ठीक करके फिर आना चाहें तो फिर मैं उनको अपनी कंपनी से भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ या और भी कंपनियां हैं, क्योंकि वो जो नई कंपनियां होती हैं उनमें 5-6-7 छोटे छोटे मेरे जैसे लोग होते हैं जो कि देते हैं पैसे, 100,000 से लेके 500,000 तक उनको मिलते हैं पैसे पहले शुरू करने के लिए कंपनी, तो उसमें एक बंदा कोई नहीं होता, जनरली 5-6-7 बंदे होते हैं, कभी कभी 20 बंदे भी हो जाते हैं, तो उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उन्हें, उनको कहता हूँ कि भाई इस जगह पे जाएं, यहाँ 1-2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनकी मंथली मीटिंग होती है जहाँ इस तरह की नई कंपनियां प्रेजेंट करती हैं, ऑलमोस्ट 50-100 लोग आ जाते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, 50-100 के करीब इन्वेस्टर होते हैं, तो फिर अब अगर इन्वेस्टर को पसंद आए तो फिर वो उनसे आगे बात करते हैं और फिर उनको इन्वेस्ट करते हैं, तो जनरली इस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए हैं, तो उसमें एटलीस्ट 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है उसी तरह से।
और वो कंपनी किस मकाम तक पहुंची, उनका असर क्या हुआ?
इसका जो इसकी जो सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है, 10 में से एक कंपनी सक्सेसफुल होती है।
अच्छा, ये तो अमेरिका में यही कहते हैं कि कोई जो भी कंपनी है या कारोबारी इदारे कायम होते हैं वो 2-5 वर्षों में नाकाम हो जाते हैं, तो क्या वजह है, क्यों कामयाब क्यों नहीं होते, हालांकि फिर भी मुसलसल कंपनियां बनती रहती हैं कारोबारी?
ये जो मेनली मुझे टेक्नोलॉजी कंपनी का ज्यादा पता है, क्योंकि मैं उसमें ये होता है कि एक तो ये होता है कि आइडिया जो होता है, चूंकि शुरू करते हैं पैसे मिल जाते हैं, शुरू हो गई कंपनी, 2-3 साल के बाद उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू चाहिए होता है, और फिर कंपटीशन भी आ जाता है। अब सब कंपनी फेसबुक तो नहीं बन सकती, एक फेसबुक बनती है उसे 1000 पीछे जो है वो फेसबुक जैसी नहीं होती, उसमें से 100 जो होती हैं, बल्कि 900 होती हैं वो चली जाती हैं 5 साल में, जैसे आपने कहा, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकती, या उनका बिजनेस मॉडल सही नहीं होता, या उनके साथ लोग सही नहीं होते, तो उस तरह से वो फेल इस वजह से होती हैं। बाज जनरली ये सिलिकॉन वैली की कंपनी पैसों की वजह से फेल नहीं होती, जो कि और बिजनेसेस पैसों की वजह से फेल होते हैं। सिलिकॉन वैली की ये जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है वो जनरली पैसों की वजह से नहीं फेल होती, क्योंकि पैसे देने वाले बहुत हैं अगर कंपनी अच्छी है तो।
लेकिन आपकी कंपनी जो है वो बड़ी कामयाब जा रही है, इसकी क्या वजह है?
नहीं, कामयाब तो वो काइंड ऑफ रिलेटिव है ना, कामयाब मेरे से भी अच्छे बहुत सारे काम कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन
तो आई मीन एवरेज होता है जो भी उसका होता है कि आप एक कंपनी में 2-3 साल के अंदर मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसमें से 6-7 गुना पैसे बन गए 2 साल के अंदर।
अच्छा,
इसी तरह 4 कंपनियां जिसमें के जीरो हो गया जितना भी इन्वेस्ट किया था।
अच्छा, ये एक तरह से बस दाव है जब चल गया या लक
बिल्कुल,
है
बिल्कुल,
जो कामयाब हो गया, लेकिन जाहिर है इसमें मेहनत का बड़ा मल दखल होता है। तो असगर अबू बकर साहब, ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में जो ख्वाब देखे थे वो कौन कौन से ख्वाब आपने पूरे कर लिए, और अपने ख्वाब पूरे करने के बाद आपने अपनी फैमिली के लिए क्या ख्वाब देखे?
जनरली मेरा उस वक्त तो जब पाकिस्तान में था तो मेरा हमेशा ये था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, हालांकि मेरी फैमिली जनरली बिजनेस में थी, तो मैंने इंजीनियरिंग में NED से की, फिर मैंने कहा कि मैंने और पढ़ना है, और उस वक्त भी अमेरिका आने का प्रोग्राम था late 1960s में, तो मैं आया यहाँ, तो यही था कि मैं आके कोई कंपनी में काम करूं, लेकिन मेरा हमेशा से टेक्नोलॉजी से मेरा, हालांकि एजुकेशन भी टेक्नोलॉजी में है, मेरी जो शुरू हुई थी जो एम्प्लॉयमेंट वो भी टेक्नोलॉजी में था, लेकिन मेरा बिजनेस से ज्यादा कनेक्शन है। तो मैं जो है ना, मैं 6-7 साल के बाद ही जब शुरू की कंपनी, तो मैं मुझे जनरल मैनेजर एक बिजनेस का बना दिया गया था, तो वो मेरा एक ख्वाब था कि मैं बिजनेस हो मेरी, तो वो बिजनेस एक वहाँ कंपनी के अंडर में हुई, फिर मेरी दूसरी बिजनेस अपनी शुरू हुई कि मैं अपना बिजनेस करूँ टेक्नोलॉजी साइड पे ही। लेकिन मैं नंबर्स जो है ना उसका मुझे हमेशा मजा आता है, अकाउंटिंग फाइनेंस उसका मजा होता है, तो वो जो है मेरा ख्वाब था और वो कुछ हद तक पूरा हो गया।
अच्छा, तो अब अपनी फैमिली के लिए आपने जो ख्वाब देखे उसको किस हद तक पूरा किया?
मेरी फैमिली में मेरे 2-3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, और मैंने यही कहा, हमने उन्हें ये कहा था कि देखिए हम तुमको जितना भी पढ़ना है पढ़ लो, हम अगर तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो हम किसी न किसी तरह से तुम्हारी सब पे करेंगे। तो हमारे मेरे 2 बच्चे हैं वो बर्कले से उन्होंने किया, फिर एक बच्चा है PhD की उसने प्रिंसटन से, और सब माशाल्लाह सब अपनी जॉब में ठीक ठाक हैं, सब अपने इंडिपेंडेंट हैं। वो मेरा एक दूसरा ख्वाब था, तो वो जो है बिल्कुल हो गया है, वो
बहुत
कहते हैं हमें कोई फिक्र नहीं है उनकी।
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया अज़हर अबू बकर साहब, हमारे प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ, आपके लिए बहुत सी दुआओं के साथ आज का प्रोग्राम समेटते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रमा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान थे अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कायम पहले पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सेंटर या पैक के एक फाउंडर असगर अबू बकर, जिनका सेंटर गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटी के कानूनी, माशरती, इक्तसादी और तालीमी मसाइल हल करने में मदद के साथ साथ यहाँ अमरीका में पाकिस्तानी कल्चर को मुतारिफ कराने के लिए भी कोशां हैं। जबकि उनका सेंटर पाकिस्तान और अमेरिका में फलाही सरगर्मियों में मसरूफ इदारों को प्रमोट करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक कामयाब बिजनेसमैन असगर अबू बकर टेक्नोलॉजी के शोबे में नए कारोबारी इदारों की सरमायाकारी में मदद करने वाली एक कंपनी K2 वेंचर्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। हमारे प्रोग्राम को हमारे मेहमान की तस्वीर के संग संग ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahizindagi۔ ہمارے مہمان اصغر ابو بکر ہمارے ساتھ موجود تھے کیلیفورنیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔